नमस्कार, स्वागत है आपका एसडब्ल्यू न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर अक्सर यह चर्चा होती रहती है कि क्या वे 2019 में जो चुनाव होने वाला है, क्या शिवसेना को एक बड़ी पार्टी के रूप में चुनावों के बाद लाकर खड़ा कर सकते हैं। इस तरह के सवाल उनसे जुड़े व्यक्तियों और कई बार तो उनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन जब देश में एक और युवा नेतृत्व पर चर्चा की जा रही है, उसे आगे लाए जाने की बात की जा रही है, तो उम्मीद की नजरें लोगों की आदित्य ठाकरे की ओर भी दिखती हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से ऐसे जो युवा नेतृत्व हैं जो उन्हें लगता है कि वे 2019 से पहले एक अच्छी रणनीति दिखा सकते हैं, जो लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि अगर उन्होंने युवा कंधों पर अपनी जिम्मेदारी दी तो अच्छा होगा। सुनो जी, क्या लगता है आपको? देखिए, कतार में आदित्य ठाकरे भी हैं और इसके अलावा राज ठाकरे के बेटे भी हैं कतार में, कई बार तो नारायण राणे के बेटों की तरफ भी देखा जाता है, तो ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स हैं, क्या लगता है आपको?
देखिए, लीडर्स तो बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो, लेकिन उन्हें ठीक तरह से मुझे लगता है कि वक्त नहीं मिल रहा है। आदित्य ठाकरे काफ़ी वक्त से पॉलिटिक्स में हैं और युवा सेना वो चला रहे हैं, तो वो मुझे लगता है नंबर वन पोजीशन पर रहेंगे क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा बैकअप है और शिवसेना की लेगेसी उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे अगर करना चाहे तो और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक दायरा है और वो दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उन्हें कट्टरपंथी जो विचारधारा है, मीन्स कट्टरपंथी नहीं, जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है पूरी उसे ही लेकर चलना है, या फिर जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो लेकर चलना। तो ऐसे दो मुद्दों के बीच आदित्य ठाकरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर आदित्य ठाकरे को देखा जाए तो वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं क्योंकि कई ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं युवाओं के लिए उन्होंने, जो युवाओं से सीधा उन्हें कनेक्ट करते हैं और युवा कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को एक पोटेंशियल लीडर जरूर मानते हैं, जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छी अगर देखा जाए तो एक अच्छी लंबी पारी खेल सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो फिर नारायण राणे ने भी अपने दोनों बेटों को राजनीति में उतारा है और ये दोनों भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कोंकण साइड में और ये सब में, नीतीश और नीलेश दोनों भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। राज ठाकरे की अगर बात करें तो राज ठाकरे के बेटे को राजनीति में पूरी तरह से आने के लिए अभी वक्त है और उस वक्त का आने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है 5-7 साल और लगेंगे। तो राज ठाकरे के बेटे में तो थोड़ा वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भी युवा लीडर हैं जैसे संदीप देशपांडे हैं, वो भी युवा लीडर हैं और कई सारे लीडर हैं जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं आने वाले दिनों में, अच्छा नाम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो शिवसेना में एक और लीडर हैं जो एकनाथ शिंदे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, युवा हैं, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है महाराष्ट्र से अगर देखा जाए, लेकिन बस यह है कि सही मौका मिलना चाहिए, सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। अगर वो राजनीति में इसी तरह से उलझ गए तो मुझे लगता है कि आगे नहीं आ पाएंगे और कुछ ऐसे नेता हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं।
तो क्या यही वजह माना जाए कि उद्धव ठाकरे जब भी अमित शाह आते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो या फिर केंद्र की तरफ से बीजेपी का जब भी कोई बड़ा नेता होता है तो उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी साथ में लिए रहते हैं ताकि वे भी सीखे किस तरह से दावपेच सियासी राजनीति में होती है, क्योंकि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे से देखने के बाद दो ठाकरे में आई, उस समय राज ठाकरे भी काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। तो क्या ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं आदित्य ठाकरे को कि अब भविष्य में शिवसेना और युवा सेना दोनों की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है?
जाहिर सी बात है, देखिए कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस का हाल है उसी तरह से शिवसेना का भी हाल है। अगर कांग्रेस में से लीडरशिप गांधी परिवार से हटा के किसी और को दे दी गई तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं चल पाएगी। और शिवसेना की अगर बात है तो शिवसेना में अगर ठाकरे परिवार से लीडरशिप उठाकर किसी और को दे दी गई तो वो विश्वास नहीं रह पाएगा। तो मुझे लगता है कि एक परिवार का इस पार्टी पर कंट्रोल होना, इस पार्टी के जो माइंडसेट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है और वो लोग भी यही चाहते हैं कि ठाकरे परिवार का ही कोई नेता ऊपर बैठे और पूरी पार्टी को चलाए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी रीत है जो काफ़ी वक्त से चली आ रही है, पहले बाला साहेब ठाकरे फिर उद्धव ठाकरे, तो उसके आगे अब आ जाएंगे आदित्य ठाकरे, और ये ठाकरे नाम ही मुझे लगता है शिवसेना को बांध के रखेगा। अगर ठाकरे नाम से हटा दिया, किसी और को लीडरशिप दे दी जाती है, तो मुझे लगता है शिवसेना बिखर जाएगी, और ना तो ऐसा उद्धव ठाकरे चाहेंगे और ना ही शिवसेना का कोई नेता भी चाहेगा कि शिवसेना बिखर जाए।
एक और सवाल है, देखिए शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सुले, उनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी भरे निगाहों से देखी जाती हैं कि वे भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये भी आगे जनता के मुद्दों को रख सकती हैं।
जी जाहिर सी बात है, देखिए वो काफ़ी वक्त से पॉलिटिक्स में हैं और अच्छी खासी अगर देखा जाए तो वो भी एक अपना दायरा बना रही हैं, वो एक अपने वोटर्स बना रहे हैं, वो अपनी एक छवि बना रही है। लेकिन पूरे अगर नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए या फिर स्टेट लेवल पर देखा जाए तो उस तरह की एक दमदार महिला लीडर वाली वो छवि नहीं बन पाई है। उन्हें और थोड़ा वक्त चाहिए, वो और थोड़ा राजनीति में और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी और दमदार महिला राजनेता करके वो महाराष्ट्र में उभर सकती है, और जो जिस तरह की छवि शरद पवार केंद्र में रखते हैं उस तरह की छवि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें सुप्रिया सुले में देखने मिले। लेकिन हाँ, पहला पड़ाव उनका स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में उन्हें देखना होगा कि किस तरह से वो अपना जो है वर्चस्व आगे बढ़ा सकती हैं, किस तरह से वो आगे जा सकती हैं, क्योंकि बहुत कम ही महिला जो लीडर हैं वो महाराष्ट्र में हैं जो काफ़ी वक्त से पॉलिटिक्स में हैं, उसमें सुप्रिया सुले का नाम सबसे ऊपर आता है, और सुप्रिया सुले एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आ रही हैं। शरद पवार की जो पूरी राजनीति है वो उनको विरासत में मिली है, उनके चाचा राजनीति में हैं, तो पूरे राजनीति से घिरी हुई है अगर देखा जाए तो सुप्रिया सुले। तो हाँ, हो सकता है कि एक दमदार महिला के रूप में वो आगे आ सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो पंकजा मुंडे भी अच्छी खासी अब उभरती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि जब उनके पिता मुंडे जी राजनीति में थे, जब वो जीवित थे तब इतना ज़्यादा एक्टिव पंकजा मुंडे नहीं देखने मिल रही थी, लेकिन हाँ अब पंकजा मुंडे थोड़ी और निखर कर राजनीति में उतरती हुई नजर आ रही है।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो राजनीति में परिवारवाद हमेशा से ही हावी रहा है, और यही वजह है कि अब जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि वे चुनावी बिसात तैयार करें, ताकि जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, उसमें उनकी पार्टी को सफलता मिले। और कहा तो यह भी जा रहा है कि इन्हीं युवाओं के कंधों पर अधिक जिम्मेदारी दी गई है कि वे लोगों के पास जाएं, युवाओं के सामने जाएं और उनसे वोट मांगें। फिलहाल क्या लगता है आपको, क्या होगा महाराष्ट्र का 2019 में चुनावी गुणागणित? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।